हम सभी प्रभु प्यारे बाप के दुलारे प्यारे शांतिवन में पहुंच गए हैं। क्यों आए हैं हम सभी, क्यों आए हैं शांतिवन में? बाबा से मिलने। हमने सुना था, देखा भी था कि पहाड़ियों में जिन नदियों का उगम होता है, नदियां आते आए, कितनी बड़ी पहाड़ी आए, या कैसा भी नहीं भी कठिनाई को सामना करना पड़े, बहती चली जा सागर। देखा भी था ना, कितने वर्ष बना देते हैं, पहाड़ियों को क्रॉस कर पहुंच जाती है। दिखा है दूर से चार दिन, कितनी भी कठिनाई उठा के हम सब यहाँ भाग भाग के इसलिए आए हैं कि कई जन्मों से हम लोगों ने तपस्या की थी कि भगवान की एक झलक हमें दिख जाए, एक बस एक थोड़ा सा दीदार हो जाए। भगवान की दीदार हो जाने से हम समझते थे हमारा जन्म सार्थक हो गया, धन्य हो गया, ऐसे मानते थे। लेकिन हमें कोई विश्वास नहीं था कि भगवान का दीदार हम कर भी पाएंगे या नहीं। था किसी को विश्वास? सुना था कि मीरा को हुआ था, सूरदास जी भगवान को देखे थे, ऐसे बहुत सारी कहानियां सुने थे। लेकिन आखिर इस कल्प में वो भी महान घड़ी आ पहुंची जबकि भगवान इस धरा पर तो आ गए, लेकिन हमारा भाग्य तब खुला जब हमने भगवान को पहचान लिया। भगवान तो आ गए हम सबकी बहुत जन्मों की जो प्रार्थना या भक्ति का फल देने के लिए पहुंच गए। भगवान के अवतरण के इतने सालों बाद भी आखिर भी हमने भगवान को पहचान लिया ना, तो उस प्रभु प्यार को इन आंखों से देखने के लिए। प्रभु जब इस धरती पे आते हैं तो कैसे बोलते हैं? भक्ति में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान ऐसे किसी मनुष्य शरीर में आता भी होगा, तो आया तो बोलता भी होगा। लेकिन अभी वो साकार हो गया, कितनी खुशी होती है ना, कि हम बहुत अपने आप को बहुत महान महसूस करते हैं कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो रात दिन तपस्या कर रहे हैं, अब भी भगवान को ढूंढ रहे। लेकिन हम साधारण से जनता जो इस जन्म में शायद इतना भक्ति तो किया नहीं होगा, फिर भी भगवान ने हमें अपना बना लिया, अपने गोद में जगह दे दिया और हमें अपने जगह बुला लिया। हम अपने इस शरीर को भी बहुत धन्यवाद कहेंगे कि हम इस शरीर के द्वारा भगवान को पहचान लिए। इन आंखों के द्वारा न जाने कितने बुरे बुरे दृश्य देखे होंगे, लेकिन इस आंखों का भी इतनी अनमोल पुण्य का खाता है जो इन आंखों के द्वारा हम क्या देखने जा रहे हैं। फिर एक बार इस कल्प में भगवान इस धरती पे हमारे जैसे एक मनुष्य शरीर में अवतरित होते हुए हम दिखा रहे हैं। कितनी सौभाग्य की बात है कि बहुत सारी बातें इन कानों से सुनी थी, जो सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, सुनना तो पड़ता है क्योंकि कान तो खुले हैं, उसका कोई दरवाजा नहीं है बंद करने का, तो बहुत सारी बातें हम सुन लिए। लेकिन परम सौभाग्य इस बात का है कि इन कानों के द्वारा हम प्रभु को बोलते हुए सुनेंगे। भगवान जब बोलता है तो हमारी कान उसका एक प्रूफ बन जाता है। इन कानों के द्वारा हम भगवान के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। तो भले ये पांच तत्वों की प्रकृति, हमारा शरीर भी तमोप्रधान क्यों ना हो, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि सतयुगी शरीर से ये कोई कम नहीं है, उससे एक गुना ज्यादा ही कहो, क्योंकि सतयुगी देवता शरीर से भी हम देवताई आंखों से भगवान को तो नहीं देख सकेंगे क्या? और देवताई कानों से क्या हम भगवान के इन अनमोल महावाक्य मुरली सुन सकेंगे? कभी नहीं। भगवान की महसूसता जब भगवान इस धरती पे आता है तो वहां का माहौल कैसे होता होगा, कितनी शक्ति कितनी फुर्जा उसमें होता होगा, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ड्रीम, हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि भगवान जब धरती पे अवतरित होता है तो वहां पर शक्तियों का एक पूरा सागर ही उभरता होगा। लेकिन हम उसे महसूस किए हैं और कल फिर करने पर उसे अनुभव करने जा रहे हैं। ये देखो इतनी अच्छी खुशी की, ये स्वमान की जो बातें हैं कि अगर हम सवेरे उठते ये याद कर लेंगे ना, तो दिन में कोई भी कठिनाई कड़वी सच हमारे सामने आए तो भी मन हमारा खुशी से उड़ता हुआ ही नजर आएगा, कोई गम मन को दबा के नहीं रख सकेगा। इसलिए रोज सवेरे अमृत वेले हम अपने इस भाग्य को पुनः पुनः दोहराएं कि वाह रे मेरा भाग्य कि इन आंखों के द्वारा मैंने भगवान को देखा है। बोल सकते हैं आप इतनी धैर्य से हिम्मत से बोल सकते हैं कि हमने इन आंखों से भगवान को देखा है? कितने बोलेंगे देखेंगे, बोलने की हिम्मत कितनों में है? है, सभी बोल सकते हैं। अच्छा, इसलिए हिम्मत है कि हमने पहचाना है, पहचाने हैं ना। जब दादी गुलजार जी के द्वारा बाबा पधारते हैं इस धरती पे तो हम वो महसूस था, वो अनुभव करते हैं कि भगवान आया। तो इसके आगे इतने जन्मों की गम कहो दुख कहो वो कुछ महसूस होता है? होता है? कभी नहीं। देखो बाबा पिछले मुरलियों में हमें कहा कि बेफिक्र बादशाह बनो। फिक्रात किस बात की होती है हमें? हम तो 84 जन्म लिए इस सृष्टि चक्र के अंदर, इन 84 जन्मों में इस जन्म के अलावा पिछला कोई भी जन्म हमें याद नहीं है। है क्या याद किसी को पिछले जन्म में कहां जन्मे थे, क्या कर रहे थे, किसके भाई थे, किसके बंधु थे? कुछ नहीं याद है। लेकिन इस छोटी सी जन्म में किसी का 70, किसी का 60, किसी का 50, किसी का 25, इन सालों में जो दिन गुजरे हैं उन दिनों में हमारे साथ कुछ अच्छे कुछ बुरे अनुभव भी हैं। लेकिन हम क्या याद करते हैं उन अनुभवों में, क्या याद करते हैं? अच्छी चीजें याद करते हैं या बुरी? सच में नहीं। मनुष्य की एक ये बहुत अच्छी खासी बात है कि मनुष्य बीते हुए दिनों में से अच्छी चीजें बहुत मुश्किल से याद करता है। कम ज्यादा से ज्यादा उसको क्या याद आता है? बीते हुए दिनों में जो गम उसने सही है, जो दुख उसने देखा है। सच में बोलिए, यहाँ सब बैठे हुए भाई बहने, आप सबके जिंदगी में बहुत सारी खुशी आई होगी, लेकिन उन दिनों में अगर किसी, समझो किसी की पत्नी की शरीर देहांत हो गया, किसी के पति के देहांत हो गया, किसी के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, वो याद है? या किसी के बच्चे ने जन्म लिया, किसी के बच्चे ने गोल्ड मेडलिस्ट का पद पाया, वो याद है? कौन सा दिन याद है आपको? बार बार कौन सी याद सताती है आपको? दुख के दिन। हम ये तो माने या ना माने, हम रिपीटेडली क्या याद करते हैं बीते हुए दिनों में जो दुख हमने देखे हैं, जो कष्ट हमने सहे हैं, वो हमें याद आते हैं। लेकिन आप एक बार थोड़ा सा रुक के देखिए, ये सृष्टि नाटक चक्र जो है 5000 वर्ष का है। इस 5000 वर्ष में हमारा ये जन्म बहुत छोटा सा, मैंने कहा ना 60 होगा, 70 होगा ज्यादा से ज्यादा, किसी का 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 40 होगा। इन 5000 सालों में हम देवता बने थे, हमारी पूजा हुई थी, हम महान थे, हम सुखी थे, लेकिन उन सब बातों को हम भुला दिए। और क्या याद है? एक छोटे से जन्म में, इस छोटे से जन्म में कभी एक बार हमारे साथ कुछ धोखा हुआ था, किसी ने हमें कुछ कट्टा मीठा कहा था, भला बुरा सुनाया था, वो बातें याद है? कितनी वंडरफुल याद है हमारी, इतनी सारी अच्छी बातें भूल गई। हम देवता बने थे, किसी को याद है? बार बार कोई याद करता है कि मैं देवता बना था, मेरी देवी स्वरूप से पूजा हो रही है, भक्त लोग अभी भी मेरी मूर्ति बना के मुझे पूछते हैं, याद करते हैं हम? कोई नहीं याद करता। क्या याद करते हैं? बहन जी आपको क्या पता, जिंदगी में हमने बहुत सारे कष्ट देखे हैं, आपने क्या देखा, आप तो सीधे सीधे सेंटर चले आए, लेकिन हमसे पूछो ना हमने कितने कष्ट सहे हैं। लेकिन थोड़ा सा रुक के देखिए, 84 जन्म के हिसाब में, एक छोटे से जन्म में थोड़े से दुख जो हमने झेले हैं, क्या 5000 वर्ष के सामने, 84 जन्मों के सुखों के सामने एक छोटा सा दुख हम नहीं भुला सकते? ठीक है, भुला भी नहीं सकते, लेकिन अगर संगम की सुहावने सुखों को याद कर ले कि हम कहां पड़े थे, हमारी क्या वैल्यू थी, कौन पूछने वाला था हमें, लेकिन किसने पूछा, किसने हमारी वैल्यू को जाना, पहचाना, अपना बनाया? स्वयं दिलवर ने, भाग्य विधाता ने, सर्वशक्तिवान भगवान ने मुझे पहचाना, मुझे अपनाया, कल्प पूर्व की याद दिला दी। लेकिन अक्सर हम ये बातें भूल जाते हैं ना, यहाँ बैठे हैं, प्रभु का दरबार है, तो जो हम कहते हैं वो सच सच लगता है आप लोगों को। जैसे ही आप बाबा के मिलन के बाद शांतिवन के गेट से बाहर जाएंगे तो ये सब यादें यही रह जाएगी, और कौन सी यादें आपके ऊपर सवार जाएगी फिर से, हैं? कौन सी, जो पुरानी बात है। लेकिन हम यहाँ शांतिवन में जो आए हैं, बाबा ने परसों भी कहा है ना, संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा है, मधुबन में हम आते हैं, क्यों आते हैं, रिचार्ज होने आते हैं। साकार मुरलियों में तो हम बहुत बार सुने हैं बादल सागर के ऊपर क्यों आता है, कि बादल भरने आता है, बादल भर के जाके बाद में क्या करता है, वो बरसता है। इसलिए हम यहाँ भगवान के दरबार में क्यों आए हैं, भरने आए हैं। तो भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर जो है उसे पहले खाली करना पड़ेगा, जगह होगी तब तो भरेंगे ना। अंदर दुख भर के रखे हैं हम लोग, कमजोरियां भर के रखे हैं, किसी ने कुछ कहा है उसके बारे में नफरत भर के रखे हैं, किसी ने मुझे कुछ धोखा दिया है उसके बारे में बदले की भावना भर के रखे हैं मन में। इतने सारी भरी हुई बातें जब मन में है तो हम प्रभु प्यार या प्रभु से ली हुई शक्ति कहाँ भर सकते हैं, जगह है भरने के लिए, लगता है भर लिए, लेकिन जब अंदर से खाली नहीं किए हैं तो ऊपर ऊपर से ही भरता है, जैसे ही बाहर जाते वो खाली हो जाता है, जैसे पहले घड़ा था वैसे ही हो जाता है फिर। तो इसलिए दादियां हमें पहले बुलाते हैं यहाँ कि आके हम तपस्या करें और अपने अंदर को थोड़ा सा हम चेक करें कि अभी तक हम अभिमानवश सोचते थे कि यस आई एम राइट, मैं ठीक हूं और सब गलत है, मैं ही सही हूं। हर एक का सोचना ऐसे ही होता है, मैं ठीक हूं और सब गलत है। लेकिन ड्रामा में ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैं अकेला ही ठीक हूं और सब ठीक नहीं है, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे नहीं हो सकता है। यहां आने के बाद हमको टाइम मिलता है और आईना मिलता है, इतना बड़ा परिवार मिलता है, इन परिवार के सदस्यों को देखते हमको लगता है हम बहुत छोटे हैं, इतनी साधना करने वाले, इतने बड़े बड़े हैं, इतनी तपस्या करने वाले, तो हमको भी और तपस्या करना चाहिए, हमें भी और आगे बढ़ना चाहिए, और हम अपने आप को चेक करना चाहिए हमें कि मेरे में क्या ऐसी कमी है, कमजोरी है, जो मैं बाबा की चाहत को पूरा नहीं कर सकता। बाबा हमसे क्या चाहते हैं? बाबा कहते दुनिया में बड़े बड़े जगत गुरु जो बैठे हैं वो अपने को क्या करते, वजन कराते हैं ना हीरो में, सोने में, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे तुम किसमें तोलोगे? बाबा की हम किसी के साथ या कैसे भी वजन कर सकते हैं क्या? बाबा की हीरे से, सोने से हो सकता है? नहीं है। लेकिन बाबा इतनी सालों से जो हमें शिक्षा पालना देते आए हैं उसके बदले में हम बाबा को क्या दें? आप लोगों ने क्या सोचा है? वैसे भी भक्ति मार्ग में एक प्रथा है, कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ करने जाते तो कुछ छोड़ के आते हैं ना लोग, तो आप लोगों ने क्या संकल्प किया, क्या छोड़ के जाएंगे यहाँ, क्या छोड़ के जाएंगे? होलसेल में नहीं कहिए कि कमजोरी, कौन सी कमजोरी छोड़ के जाएंगे? कमजोरियां तो हजार है, लेकिन उनमें से कौन सी कमजोरी हम छोड़ के जाने वाले हैं इस बार। इसलिए कल का भी एक दिन है, परसों का भी एक दिन है, बाबा आने को दो दिन बाकी है, मतलब हम अभी से शुरू करेंगे कि मेरे में ज्यादा से ज्यादा मुझे सताने वाला कौन सा कमजोरी है जो बार बार मुझे पुरुषार्थ के रास्ते में विघ्न बन के सामना हो जाए, खड़ा कर देता है। जान सकते हैं हम? देखिए, बाबा ने तो कह दिया कि अभी हमको संपूर्ण बनना है, उसकी ओर बढ़ना है। संपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए हम दूसरों को देखते रहेंगे तो हम रह जाएंगे। अगर हम दूसरों को देखते देखते, आप देखिए हम चल रहे हैं, अगर हम किसी को देखते देखते चलते हैं तो पांव फिसल जाता है, हम गिर जाते हैं। रास्ते को देखते सीधे सीधे एम हमारे सामने, अगर हमें क्या जाना है, कहाँ जाना है और कहाँ पहुंचना है, रास्ता क्लियर है तो हम आराम से पहुंच जाते हैं। दूसरे को देखने लग पड़ते तो हम गिर जाते हैं। इसलिए पहले अभी हम अपने आप को जांचे कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमजोरी है जो बाबा के हजार कहने पर भी हम बाबा की एक एक छोटी छोटी बात को नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि हम बाबा से हमें प्यार नहीं है, हम सभी बाबा से प्यार करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? हमारा ज्यादा प्यार है बाबा से या बाबा का ज्यादा प्यार है हमसे? किस ओर से फोर्स ज्यादा है, बाबा की तरफ से फोर्स ज्यादा है हमारी ओर से? बाबा की ओर से, माताएं सच कह रही है, बाबा की ओर से फोर्स ज्यादा है और हमारी ओर से फोर्स कम है, इसलिए हम संपूर्ण नहीं बन रहे हैं। इसलिए इस बार फोर्स बढ़ के जाएंगे ना बाबा, जितना प्यार हम भी बाबा से करें। दुनिया में भी कहते हैं जब प्यार होता है ना तो लोग अंधे हो जाते, कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो अल्प काल का प्यार होता है और भौतिक देह से प्यार होता है, लेकिन यहाँ तो जन्म जन्मांतर के भक्ति का फल हमने पाया है, भगवान ने खुद हमें अपना बनाया है। इस प्यार के आगे पता नहीं हम क्या न न्योछावर कर दे, लेकिन हम न्योछावर करना तो चाहते हैं, हमारा भी दिल है बाप समान बनने का, बाबा जैसे चाहता है वैसे बनने के लिए हम भी सोचते हैं, लेकिन बीच में लेकिन आ जाता है। क्यों लेकिन आ जाता है, कमी क्या है, कौन सी कमजोरी है जो हमें बाप समान बनने के लिए विघ्न रूप बन रहा है? मोह है, माताएं कहती है मोह है। पहला हम एक अंडरलाइन करें, हमारी ये जो प्रॉब्लम है कि हमारे में दृढ़ता की कमी है। जो बाबा कहते हैं वो सब हमें अच्छा ही लगता है, हम करने भी चाहते हैं, लेकिन जो हम मन में ठान लेते कि मुझे ये करना है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो बदल जाता है। फिर आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, थोड़े दिन के बाद करेंगे, आज थोड़ा करेंगे, ऐसे। बाबा ने बहुत बार हमें ये भी कहा है कि आप लोग कितने भी व्यस्त होते हो तो क्या आप ऐसे कहेंगे, आपको प्यास लगेगी तो आप कहेंगे कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है, फुर्सत होने के बाद मैं पानी पी लूंगी, ऐसे कोई कहता है? नहीं, कितना भी कोई व्यस्त क्यों ना हो, जब उसे प्यास लगता है ना तो 5 मिनट या 10 मिनट देरी करेगा भी, फिर भी पी लेगा। खाना भी ऐसे आराम से बैठ के भले नहीं खाएगा, चलते फिरते भी खा लेगा, एक टाइम छोड़ेगा दोबारा तो खा लेगा, पूरा खाना तो नहीं छोड़ लेगा ना कि मैं व्यस्त हूं मैं बिजी हूं कहकर। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के लिए हम थोड़ा सा बहाना जरूर कर रहे हैं। इसके लिए कारण है दृढ़ता की कमी। हम बाबा को नहीं देख रहे हैं, हम आसपास अपने भाई बहनों को देख रहे हैं, यह ऐसे कर रहे हैं, यह ऐसे कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा करूं तो चलेगा। लेकिन हम ये भूल गए कि हर कोई अपना भाग्य बना रहा है ना, हर कोई अपना भाग्य बना रहा है। वो अपना भाग्य बिगाड़ रहा है तो क्या मैं भी अपना भाग्य बिगाड़ लूं, ऐसे करूं? लेकिन सोचने के लिए फुर्सत कहाँ है हम लोगों के पास, जैसे वो कर रहे हैं हम भी करते जा रहे हैं। इसलिए हम बाबा के इन मुरलियों के आधार से हमें बेफिक्र बनने के लिए थोड़ा सा दृढ़ता अपनाना पड़ेगा। कौन सी फिक्रात जो हम कर रहे हैं, किस जिसके कारण हम बाबा की आशाओं को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, जैसे कि अभी हम लोग सुनते हैं, जैसे कि अभी कल बाबा आएंगे तो हॉल में जब बाबा हम सबको उठाते हैं तो इतनी बार अनाउंसमेंट होती है कि कोई बात नहीं करो, कोई बात नहीं करो, फिर भी क्या करते हैं हम उठते समय, क्या करते हैं हम, कोई बात करना नहीं चाहते फिर भी बात कर लेते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना, किसी को बात करने का दिल नहीं होता है फिर भी बात कर लेते हैं। तो सभी जब हजारों में बात करने लगते हैं तो बाबा को भी चुप बैठना पड़ता है, क्योंकि हजारों बोलने लगेंगे तो बाबा क्या करेंगे। मैं एक छोटी सी बात कह रही हूँ, छोटी सी बात है ये। ऐसे ही हम अमृत वेले के पुरुषार्थ के लिए, मुरली के लिए, कोई भी श्रीमद पालन के लिए, ऐसे नहीं कि हम नहीं करते, करते हैं, लेकिन जितना मर्जी आया, जब मर्जी आया कर लिए, जब मर्जी नहीं है तो नहीं किए। तो हमारे अंदर अभी तक ये सीरियसनेस नहीं है कि बाबा जो कह रहा है ये हमारी भलाई के लिए कह रहा है। लोग दुनिया में हमने सुना है कि अगर कोई बात नहीं मानता है तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते तो भी नहीं सुनता है तो तुम्हारा क्या सुनेगा, ऐसे बोलते हैं ना लोग, भगवान कहता है तो भी नहीं सुनता है तो तुम्हारा क्या सुनेगा। अभी हालात ऐसे ही हो गई है ना, भगवान कह रहा है कि तुम ऐसे नहीं करो। अभी हमने गीत सुना कि हमारे बोल कैसे हो, किसको पता नहीं है कि देखिए हम सभी यहाँ बैठे हैं, अगर हमें कोई कुछ कड़वे शब्द में हमसे कोई बात करता है, कठिन शब्द हमारे बारे में यूज करता है, कोई बोल से हमारा इंसल्ट करता है, तो हमें खुशी होती है क्या? कौन कौन ऐसे हैं यहाँ जो बैठे हैं बुरे शब्द सुन के भी खुश होते हैं? है कोई यहाँ? नहीं है। हम किसी के बुरे सुन नहीं सकते, बुरा शब्द, तो क्या जब हम बोलते हैं कठिन शब्द, कड़वे शब्द, बुरे शब्द, क्या दूसरों को अच्छा लगेगा? कभी हमने ये सोचा है? फिर हम कहते क्या करें, मुंह से निकल गया, हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन मुंह से निकल गया। क्या अपने आप निकलता है, वो ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक है क्या? नहीं है। मन में संकल्प चलता है, बाद में ही तो बातें निकलती है ना, लेकिन हम ऐसे कह देते। फिर कहते कहते ये भी कहते, बहन जी मैं थोड़ा बोलता हूँ रफ, लेकिन मेरा दिल है ना बहुत सच्चा है, साफ है। आप है ना, मेरा दिल देखिए, मेरी जबान नहीं देखिए, मैं थोड़ा ऐसे ही बोलता हूँ, बोलने का ढंग ही ऐसे है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अपने को ये परख ले कि लोग हमारे दिल देखने के लिए आते हैं या हमारे व्यवहार, हमारे साथ जो उठते बैठते वो हमारी बातों से हमारे साथ व्यवहार करते हैं या हमारे दिल से व्यवहार करते हैं। इसलिए बाबा इतनी बार कह रहा है हम लोगों को, फिर भी हमारी बोल में सुधार नहीं आती। रोज सुनाते हैं ना बाबा, कल भी बाबा ने कहा, आज भी बाबा कहते, फिर भी देखो छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें नहीं। लेकिन अभी आगे आप ये पुरुषार्थ की सिलसिला लेके आगे चलो तो सिंपल, बाबा का एक ही हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए आदेश है कि खुद को आत्मा समझो और बाप को याद करो, है ना, सिंपल सी। और कुछ बाबा हमें तपस्या करने को नहीं कह रहा है, होम हवन करने को बाबा नहीं कह रहा है, एक टांग पे खड़े हो जाओ नहीं कह रहा है बाबा, उपवास वनवास करो वो नहीं कह रहा है। सिंपल सी बात बाबा कह रहा है, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये जो बातें हैं इसको आप डिवाइड कर लीजिए, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इन दो बातों में से आप लोगों को सहज कौन सा लगता है? अपने को आत्मा समझना आसान है या बाप को याद करना आसान है? जो कहते हैं अपने को आत्मा समझना आसान है वो थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। जो कहते हैं अपने को आत्मा समझना आसान है, मेरी बात समझ में आई ना? अपने को आत्मा समझना आसान है, ये जो समझते वो हाथ ऊंचा करें। ठीक है। अभी दूसरी है, बाप को याद करो। ये आसान है कितनों को? बहुतों को बाप को याद करना आसान है, लेकिन कठिनाई किसमें है? अपने को आत्मा समझने में। लेकिन बाबा ने ये हमको अलग अलग करके नहीं दिया, अगर हो सके तो अपने को आत्मा समझो, नहीं तो बाप को याद करो, ऐसे कहा है क्या बाबा ने? नहीं कहा है। बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये दोनों साथ साथ हो। लेकिन हम लोगों के पुरुषार्थ में हम लोग ये समझते हैं कि बाप को याद करना तो बहुत आसान है हम लोगों के लिए, क्योंकि जन्म जन्म का आदत है। हे भगवान कहते थे, राम कहते थे, कृष्ण कहते थे, शब्द बदल दिए, बाबा बना दिए, बस इसलिए आसान हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं केवल बाबा बाबा कहने से प्यार तो रहेगा, लेकिन जो आत्मा का विक्रम विनाश होना चाहिए उसके लिए फर्स्ट स्टेप है अपने को, ठीक है, खुद को आत्मा भी समझ लिया थोड़ा भी कष्ट उठा के। लेकिन दूसरा एक पुरुषार्थ आता है कि हम आत्मा है तो सामने वाले को भी हम आत्मा की नजरिए से ही देखें, है ना? कितनों ने ये अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं तो सामने वाला भी आत्मा है, कितनों ने ये अभ्यास किया? देखे, यहां बैठे बैठे नहीं, चलते फिरते, खाते पीते, गृहस्थ में रहते, बाल बच्चों के संग रहते भी मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ऐसा अभ्यास आसान है या मुश्किल है? क्या लगता है आप लोगों को, आसान लगता है? नहीं। देखिए, हम बाबा के आशाओं को हम क्यों नहीं पूर्ण कर सकते? कि ये जो बाबा ने एक सिंपल सा पुरुषार्थ हमें दिया बाबा की दृष्टिकोण से, कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, इसको हमने सीरियसली पुरुषार्थ में अपनाया नहीं। हम बैठे बाबा के गुणगान करें कि हाँ बाबा आप ये सागर हो, वो सागर हो, आप ऐसे हो वैसे हो, उसमें हम मस्त हो गए, खुशी भी मिली, शक्ति भी मिली, अनुभव भी हुए, आंख भर आई, घंटों भर बैठ गए, तपस्या भी किए, लेकिन जैसे उठ के बाहर गए, एक व्यक्ति का सामना करना पड़ा, तो उस व्यक्ति को हम आत्मस्वरूप में देखना तो दूर, हम भाई की दृष्टि से भी नहीं देख सकते, वहां हम फेल हो गए। फिर क्यों हम संपूर्णता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? कि ये पुरुषार्थ का जो पहला सेंटेंस है ना, कि अपने को आत्मा समझो, जब मैं आत्मा हूं तो आप भी तो आत्मा ही है, इसके ऊपर हमको अभी अटेंशन देना है। संपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए हमारा अटेंशन, जितना हम बाप से प्यार करते हैं, दुनिया में कहा जाता है जिस व्यक्ति को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है ना, उसको दुनिया में कोई भी रेस्पेक्ट नहीं देता, जिसको आत्मसम्मान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए दुनिया में कोई सम्मान नहीं देता है। लेकिन हम ये बात भूल गए, हम आत्मसम्मान की बात भूल गए, देह सम्मान की बात करते आए, तो हम सोचते हैं जब हम देह सम्मान के विचार में ही सोच रहे तो सामने वाला मुझे सम्मान कैसे देगा, क्योंकि मैंने आत्मसम्मान तो रखा ही नहीं है। खुद आत्मसम्मान में रहूंगा तब तो सामने वाले को भी आत्मसम्मान दे सकूंगा। बाबा ने ये जो पहली स्टेप हमें बताई है, ये थोड़ा कमजोर है। जब हम बैठते हैं तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं, सब आत्माएं हैं, परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं, ये सब प्रभु प्यारे हैं, आत्मा सितारे हैं। जब हम योग में बैठते हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बाबा हमें बैठे बैठे 24 आवर्स 24 घंटा योग बैठ के करने को नहीं कहा है ना, हम कर्मयोगी हैं, इसलिए हम बेफिक्र भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा पहला स्टेप ही वीक है। हम आत्मस्वरूप में तो रहे, तब हो सकता है हमारा भी आत्मस्वरूप, जब सामने वाले को हम आत्मस्वरूप में देखेंगे। अगर ये नहीं हो सकता तो हमारा अगला स्टेप तो और ही वीक होता जाएगा। इसलिए अभी हमारी अटेंशन अपने ऊपर इस बात की हो, जो पहले हमने ये सोचा कि हमारा ये जो स्वमान है या नशा है, कि भगवान ने मुझे अपनाया। अब थोड़ा और एनालाइज कीजिए, भगवान ने मुझे अपनाया, किसको अपनाया? शरीर को अपनाया, आत्मा को अपनाया। अगर शरीर को अपनाता ना भगवान, तो नजदीक भी आने नहीं देता हमें। इतने गंदे, इतने बुरे हो गए थे हम, लेकिन भगवान ने हमें आत्म स्वरूप में देखा। वो भी कौन से स्वरूप में? अब के स्वरूप में नहीं, बिल्कुल नहीं, आत्मा के अनादि स्वरूप में देखा, आत्मा के आदि स्वरूप में देखा, तभी भगवान ने हमें अपना बनाया। क्योंकि भगवान के सामने हमारा वर्तमान भी है, तो भविष्य भी है, तो भूतकाल भी है। तो भगवान जानता है कि जो सामने आत्मा बैठी है, ये आत्मा पहले क्या थी। इसी कारण भगवान ने हमें ऊंचा उठाया। लेकिन हम अभी इसी में फंसे पड़े हैं, ना हम पीछे जा रहे हैं, ना हम आगे जा रहे हैं, इसी शरीर के अभिमान में फंसे पड़े हैं। कई बार हम अभिमान में आके बोल लेते, आप क्या समझते हो मैं कौन हूं, जानते हो आप, बोलते नहीं है क्या? थोड़ी सी बातें ऊंच नीच हो गई, कुछ बैठने का जगह ऊंच नीच हो गया, कुछ खाने का ऊंच नीच हो गया, तो हम कहते कि आप क्या समझते हो मुझे। अरे क्या समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, लेकिन समझते हैं क्या? ये आत्मा आत्मा सब है ना, मुरली क्लास में रखो, लेकिन यहां क्या चलेगा? फिर देह ही चलेगा। ये जो देह अभिमान का कीड़ा हमारे अंदर आ गया है, जैसे लकड़ी को कीड़ा लगता है तो आपको पता है ना, बाहर से ऐसे ही सोफे सोफे जैसे ही रहता है, लेकिन अंदर से पूरा खा लेता है। इसी तरह देहाभिमान का कीड़ा जो हमारे अंदर घुस गया है, पहले उसे निकालना होगा। उसे निकालने के लिए हमें अपने ऊपर खुद को ही मेहनत करना होगा, बैठ के तपस्या करना होगा। लेकिन हमें बैठ के तपस्या करने का इतना पेशेंस ही नहीं है। हम देख रहे हैं बहुत, हम कल कोई भाई मेरे से बात कर रहा था, ऐसी ही बातें हो रही थी, तो कह रहा था बहन जी बैठ के योग नहीं किया जाता, आधा घंटा भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता मैं। और खुद को, खुद की सफाई खुद ही दे रहा था, कह रहा था बहन जी ऐसे नहीं है, भगवान ने तो हमें साधु बनाया है। साधु का मतलब होता है फिरने वाला, वो एक जगह बैठता नहीं है। लौकिक में साधु सन्यासी उनको कहते हैं ना, वो एक जगह नहीं बैठे, वो ऐसे पर्यटन करते रहे। इसलिए हमारा भी ये ठीक है, हम पर्यटन करते ही रहे, बैठ के हम योग नहीं करें, क्योंकि हम साधु है। ऐसे है क्या? नहीं, जब तक हम एक जगह बैठ के घंटा तपस्या नहीं करेंगे, तो हम अपने अंदर को चेक नहीं कर सकेंगे, अपने अंदर हम जांच नहीं सकेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरियां हैं। क्योंकि अब तक हमें दूसरों की कमजोरियां ही नजर आती है कि नहीं? अभी मैं बोल रही हूं या कोई दूसरा बोल रहा है, तो बोलेंगे कि इन्होंने ये जो कहा ना ये ठीक नहीं है, इन्होंने ये जो कहा ना ये ठीक नहीं है। अगर कोई बैठता है मेरे बाजू में तो कहते ये जो बैठा है ना ये ढंग ठीक नहीं है। अगर कोई बोलता है या कुछ करता है, हमारी ये आदत हो गई है, दूसरों की कमियां देखना ही हमारे पेशा बन गया है, प्रोफेशन। न चाहते भी हमें दूसरों की कमजोरी ही नजर आती है। तो अभी हम चश्मा चेंज करके जाएंगे, चेंज करेंगे ये शांतिवन के बेहद आई हॉस्पिटल में हम सबको नया चश्मा मिलने वाला है। कौन सा नया चश्मा? पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। रोज मुरलियों में, महारथियों के क्लासेस में, जब भगवान की पधरामनी होगी, तो भगवान के बोलों में हमें बहुत अच्छा ताकतवान एक चश्मा मिलने वाला है, जिस चश्मे के आधार से हम सभी में क्या देख सकेंगे? अच्छाइयां। अगर अच्छाइयां ना भी देख पाए, ना बुराइयां तो नजर ना आए, कम से कम इतना तो हो। जब दूसरों की बुराइयां देखना हम बंद करेंगे, तो हमें अपने अंदर देखने के लिए फुर्सत मिलेगी। अभी क्या हो गया है, दूसरों को देखने में ही हम इतने बिजी हैं, अपने अंदर देखने के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। तो इस शांतिवन में आए हैं, तो कम से कम हम ये तो पुरुषार्थ करके जाएंगे इस बात कि हमारे अंदर दृढ़ता रखेंगे, इस बात की हम दूसरों की कमजोरियों को अगर देखे भी तो वहीं छोड़ देंगे, दिल में नहीं रखेंगे। अगर हमने सुना कुछ बात तो दूसरों को नहीं सुनाएंगे, हाँ फ्री ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेंगे, फ्री प्रसारण नहीं करेंगे, आपने देखा उसने ये कहा, इसने ये कहा। इससे क्या होगा, ये छोटी बातें हैं। जैसे कि देखिए आप सब यहाँ बैठे हैं, सवेरे सभी ने मुरली सुनी है, कितनी बातें याद है हमको मुरली में से, एक दो तीन चार बातें याद हो गई तो अहो सौभाग्य। लेकिन 10 साल पहले किसी ने आपको कहाँ डांटा था वो याद है कि नहीं है, भूल गए? नहीं भूले, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखो भगवान की बात हम भूल सकते हैं लेकिन इंसान की बात हम कोई कीमत पर भूलेंगे नहीं, ऐसी आदत हो गई है हमें। जितना इंसान की बात याद रखेंगे उतनी ही भगवान की बात भूलते जाएंगे, जितनी भगवान की बातें भूलते जाएंगे। बाबा ने कह दिया मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली याद ही नहीं रख सकेंगे तो क्या मुरली पास में रखने से प्यार हो जाएगा क्या, तकिए के नीचे रख के मुरली सोने से क्या मुरली से प्यार हो जाएगा, मुरली के बुक सारे खरीदने से मुरली से प्यार हो जाएगा? नहीं, मुरली से प्यार माना मुरली की एक एक बात, जैसे मम्मा को याद रहता था, उसके लिए इंसानों की बात भूलना पड़ेगा। जब इंसानों की बात भूलने की आदत होगी हमें, इंसानों की कही हुई बातें, इंसानों से सुनी हुई बातें जब हम भूलते जाएंगे तो भगवान से सुनी हुई बातें याद रहेगी। तो क्या करेंगे अभी, कुछ तो बाबा के घर से हमें याद सौगात मिलेगी, याद सौगात लेते समय अपने साथ कुछ एक थोड़ा सा प्रण करेंगे कि हम पुरुषार्थ करेंगे कि हम इंसानों की बात दिल से नहीं लगाएंगे, याद नहीं करेंगे, याद करेंगे तो भगवान की बात। तो फिर ऐसे नहीं करिएगा, फिर कल अनाउंसमेंट होगा कि आप लोगों को इस गेट से आना है, उस गेट से आना है, वो भी इंसानों की कही हुई बातें भूल जाए, ऐसे नहीं करना। फिर यहां नहीं अप्लाई करना, इंसानों की ऐसी बातें जो बार बार हमें सताती है, याद दिलाती है, भगवान को भुला देती है, ऐसी बातों को हम भूल देंगे। हो सकता है ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं, थोड़ा सा हम संपूर्णता की ओर बढ़ सकेंगे। जितना हमें मुरली, हम मुरली को याद कर सकेंगे ना सारे दिन में, उतने ही हमारे अंदर पुरुषार्थ की लगन भी बढ़ती जाएगी। मुरली ही याद नहीं रहेगी तो कैसे हमारे अंदर लगन जागृत होगा? इसलिए हम अपने अंदर थोड़ा सा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि जैसे देखो जिंदगी में बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की, ऐसे मधुबन में होके आए, शांतिवन भी होके आए, भगवान की पधरामणी भी देख लिए, लेकिन इस बार जब भगवान से मिले तो हमने क्या पाया? इस बार जब भगवान हमें दृष्टि दे रहा था तो उस दृष्टि के बदले में हमने अपनी कौन सी कमजोरी उनको सौंप दिया? इस बार जब हम भगवान की एक एक बात अपने कानों से सुन रहे थे तो बदले में हम भगवान के सामने कौन सा अपना अवगुण समर्पण कर दिया? ऐसा कुछ नोट डाउन करेंगे कल सवेरे, हम कल से शुरू करें कि बाबा जब सामने आएंगे तो मुझे क्या क्या बाबा के सामने समर्पण करना है, बाबा की जब मुरली सुनूंगा तो मुझे बाबा को क्या दान में देना है, ठीक है? ऐसा जब हम थोड़ा सा पुरुषार्थ की ओर अटेंशन देंगे तो कितना बड़ा संगठन क्यों ना हो, हम संपूर्णता की ओर अग्रसर होते जाएंगे, बाबा की चाहना हम पूर्ण कर सकेंगे, हमारे अंदर पुरुषार्थ की लगन बनी रहेगी और व्यक्तियों को देख के हम डगमगाएंगे नहीं कभी, अपने पुरुषार्थी जीवन में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तभी क्या होगा, सेवा का भी उमंग होगा, नहीं तो क्या होगा, कमजोरियां देखने की आदत हो जाएगी तो फिर सेवा भी उसी कमजोरी में बह जाएगी। इसलिए इतनी आसान बात नहीं है कमजोरियों को छोड़ना, आदतों को मिटाना, लेकिन अगर हम कहते हैं ना, इंसान अगर ठान लेता है तो कुछ भी कर लेता है, पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी, लेकिन हम पॉजिटिव साइड करेंगे, हमारे में जो कमजोरी है पहला जो बीती हुई बातें, इंसानों की कही हुई बातें, उनको हम क्या करेंगे, उन सभी बातों को गंगा में बहा देंगे। कौन सी गंगा में? ज्ञान सागर के परम पवित्र ज्ञान गंगा में, महाकुंभ में नहा लेंगे, है ना। ऐसे एक अच्छी मनसा बनाएंगे हम, अभी से बनाएंगे, तब हम भगवान के सामने बैठेंगे। तो जब बाबा हमसे बात करेगा, बाबा हमें देखेगा, बाबा हमें दृष्टि देगा, बाबा हमें शक्ति देगा, तो हम रिसीव कर सकेंगे। नहीं तो ये सब हो गया वहां कोने में, ये जगह नहीं मिला, बहन जी ठीक से मिलन नहीं हुआ, ये सब बातें होगी। अगर हम अपनी स्थिति को बना के बैठेंगे तो कहां भी बैठेंगे तो बाबा हमें, हमसे ही बात करेगा। कहां भी बैठेंगे बाबा हमें ही शक्ति देगा, कहां भी बैठेंगे तो हम बाबा से शक्ति लेंगे और बदल के जाएंगे। शांतिवन में आए हैं तो कहते हैं ना, मानसरोवर में कोई भी डूबता है, डुबकी लगाता है तो क्या होता है, वो परी बन के निकलता है। तो हम तो सच में ज्ञान मानसरोवर में डुबकी लगाने आए हैं, तो सच में हम बदल के जाएंगे। ऐसे संकल्पों के साथ, इसी दृढ़ता के साथ हम बाबा से इस बार पुनः मिलेंगे और कल्प कल्प के लिए ये मिलन यादगार बना लेंगे। कल्प कल्प के लिए ऐसा मिलन कि इसी नशे में बैठेंगे, अरे भगवान मुझे। अरे भगवान मुझे मिलने के लिए आ रहा है, भगवान, अरे भगवान जब पधारता है तो मैं इन आंखों से देखूंगा। ये जब याद करेंगे ना तो रोमांच हो जाए शरीर में, बाबा कैसे प्रवेश करता है। इंस्पेक्टर बन के नहीं बैठो, बाबा के सामने इंस्पेक्टर बन के नहीं बैठना, लेकिन इसी विश्वास से, इसी अनुभव से कि मैं इन आंखों से भगवान को देख रहा हूं, भगवान की पधरामणी को देख रहा हूं, मैं इन कानों से अभी भगवान को सुनने वाला हूं। हम नोट करें इस कल्प में कितनी बार मैंने डायरेक्ट भगवान से सुना, कितनी भाग्य की बात है ये। हो सकता है इसी नशे में बैठेंगे तब ना आगे ना पीछे ना कुछ, बस मैं और बाबा, इतनी भीड़ के बीच में हम अकेले ही होंगे, मैं और बाबा, तीसरा कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन वो तब होगा जब हम अपनी स्थिति को अच्छी तरह से सेट करके बैठेंगे। मैं आपको बाबा की एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। बाबा ने कहा है आप सबकी ना संपूर्णता की ड्रेस तैयार हो गया है, जैसे कि में कपड़े लटकाने के लिए कुछ जगह नहीं होते टंगाते वहां जाके, ऐसे हमारी भी संपूर्ण देवता ही ड्रेस वैसे टंगी हुई है हर एक की, बस हमको उसी के अंदर फिट होना है। वो ड्रेस हमारे हिसाब से फिट होने वाला नहीं है, उस ड्रेस के हिसाब से हमें फिट होना है, समझ में है। ऑलरेडी हमारा एक संपूर्णता की ड्रेस है, उसी के अंदर हमें फिट होना है। तो कुछ ज्यादा है तो घटाना है, कुछ कम है तो बढ़ाना है, तभी हम उस ड्रेस के अंदर फिट होंगे। उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, कौन करेगा मेहनत हमारे लिए, कौन करेगा मेहनत, बोलिए। बाबा करेगा, बाबा, दीदियां करेगी, दादियां करेगी, हमारे लिए कौन करेगा, खुद को करना पड़ेगा। अगर खुद को, खुद के लिए खुद को ही करना है, अगर हम ही अलबेले हैं तो कौन करेगा, फिर कोई नहीं करेगा। हम ऐसे की ऐसे रह जाएंगे और जो ड्रेस मिला उसी को पहन लेंगे, फिर बाद में वो हमें फिट हो ना हो। कई बार ऐसे होता है ना, किसी की दूसरे की ड्रेस पहन लो, फिट हो ना हो उसी में ऐसे ऐसे, हमारा भी ऐसी हालत हो जाएगी। अगर हमारी ही ड्रेस में हमें फिट होना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस मेहनत की कमी हर जगह नजर आती है, आजकल की दुनिया में भी यही हवा चल रही है, किसी को मेहनत नहीं चाहिए, हर किसी को खाना भी मेहनत से नहीं बनाना चाहते, सभी रेडीमेड फूड चाहिए, इंस्टेंट, कोई भी चीज मेहनत से कोई कमाना नहीं चाहता है। और ब्राह्मण परिवार में भी हम लोग ऐसे ही बनते जा रहे हैं, हमें मेहनत नहीं चाहिए लेकिन फल प्राप्ति पूरा चाहिए। हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत बहुत अच्छा अपने आप को बदलने से ही हम अच्छा बन सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम खुद को बदले, खुद को बदलने के लिए खुद को हम ही चेक करें, क्योंकि दूसरा अगर कहेगा ना तुम्हारे में ये कमियां हैं, तो हम कहेंगे बड़ा आया है मुझे कहने वाला, खुद में देख कितने कमियां हैं, पहले खुद को तो बदल ले बाद में मुझे कहना। ऐसे कहते कि नहीं कहते? दूसरा कोई कहेगा तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, भगवान कहता है तो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम अपने लिए कुछ समय दे अभी। वैसे भी आज रात को भट्टी रखा है ना, दो से सवेरे 2 बजे से 5 बजे तक। ऐसा मौका फिर बार बार तो नहीं मिलने वाला। संगठन में हजारों के संगठन में बैठ के 3-3 घंटा भट्टी करें, खुद को चेक करें थोड़ा सा कि मेरी क्या कमी है जो मुझे चेंज करके जाना ही बन रहे। करेंगे, सभी करेंगे, तभी आप बाहर जाएंगे ना दुनिया में। जो बाबा कहता आपको देखेंगे तो लोग कहेंगे ये सर्च लाइट कहां से आया, ऐसे लोग समझेंगे अगर हम बदल के जाएंगे तो। इसलिए क्या होता है आप लोगों को पता होगा, वैसे भारत के कोई भी शहर में जाओ हनुमान जी का मंदिर तो हर जगह होता है, होता है ना। एक मान्यता है कि हनुमान जी के मंदिर में कोई जाता है अगर उसमें कोई भूत प्रेत की प्रवेशता हो तो वो बाहर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं आता, क्योंकि हनुमान जी से भूत प्रेत गण डरते हैं। लेकिन जब कोई आदमी अंदर आता है मंदिर में पूजा सब करके बाहर जाता है तो बाहर बैठा हुआ भूत क्या कर देता है, फिर से उसे पकड़ लेता है। समझ में आप लोगों को मैंने क्यों कहा ये? हम सब अभी हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं, हनुमान जी से भी बड़े, हनुमान जी का इष्ट राम के मंदिर में, परम निराकार राम के मंदिर में बैठे हैं। यहाँ कोई हमारे अंदर ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना जलसी है, ना मोह है, ना ममता है, सब बाहर रख के आ गए हम। लेकिन जैसे ही शांतिवन की गेट से बाहर निकलेंगे तो कौन पकड़ लेगा? भूत। फिर सवर तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सबने रामायण का सीरियल तो देखा होगा, देखे हैं सभी ने? लव कुश जब राम से या लक्ष्मण से युद्ध करते हैं तो अपने चारों ओर एक रक्षा वलय बना लेते हैं, उसी के अंदर रह के युद्ध करते हैं, तो कोई भी सामने का अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। ऐसे भक्ति मार्ग के रामायण में लिखा हुआ। इसलिए हम तो सच्चे राम के दरबार में बैठे हैं, भगवान के दरबार में बैठे हम यहां से ऐसा एक रक्षा वलय, रक्षा मंत्र लेके जाए जो कोई भी भूत प्रेत हमारी तरफ आना तो दूर, हमारी ओर आंख उठा के भी ना देखे, हो सकता है। हमारी तो यादगार है भक्ति मार्ग में, ऐसे तो रामायण नहीं लिखे होंगे ना, संगम युग में हमने किया है तभी तो उन्होंने लिखा है। तो हम ऐसे तपस्या करें, ऐसे शक्ति भर के जाए, कोई भी कमी कमजोरी माया हमारे ऊपर प्रहार करना तो दूर ही है, हमारी ओर देखे भी ना, ऐसा पुरुषार्थ के लिए हम अपने मन बना के जाएंगे, तभी हम संगम युग के इन अनमोल क्षणों को यादगार बना सकेंगे, क्योंकि बार बार तो नहीं आने वाले हैं। आएंगे क्या? सतयुग त्रेता के बीच में भी एक संगम होता है, क्या वहां भगवान की पधरामणी होगी? होगी नहीं। त्रेता और द्वापर के बीच में भी एक संगम होता है, त्रेता अंत होता है और द्वापर का आदि, तो उस समय भगवान आते हैं क्या? नहीं। द्वापर और कलियुग के बीच में भी एक संगम होता है, क्या उस समय भगवान का अवतरण होता है? नहीं। भगवान का अवतरण तब होता है, कब? कलियुग का अंत और सतयुग के आदि के इस सुहावने समय पर। ये फिर 5000 वर्ष के बाद ही होने वाला, अगर अब हमने नहीं किया तो 5000 वर्ष के बाद भी हम नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल साफ है, कोई नहीं बदल सकता इसे। ये सब जानते हुए मानते हुए भी हम खुद को नहीं बदल रहे हैं, तो जो बाबा कहता है महाते महामूर्ख देखना हो तो भी कहां देखे, हम मूर्ख तो नहीं है ना, हम सच्चे ज्ञानी है, समझदार है, तो हम भगवान के दरबार में अपने आप से दृढ़ता से मन बना के चले कि हम भगवान का दिया हुआ, सभी में देवता एक गुण देखने वाला चश्मा पहनकर जरूर जाएंगे। जाएंगे ना, मिला है कि नहीं मिला है सभी को चश्मा? मिला है नहीं मिला है? मिला है। आप लोगों ने देखा होगा ये 3D सिनेमा देखने के लिए जाते हो तो वहां पर एक चश्मा देते हैं लोग, उसको पहन के देखो तो वो फिल्म बहुत अच्छा दिखता है। भगवान के दरबार में भी ज्ञान का ऐसा अच्छा चश्मा मिलता है जिसे पहन लो तो सब में क्या दिखेगा? गुण ही गुण। लेकिन हम कई बार ना चश्मा पहनने से कुछ ये प्रॉब्लम होता है तो उतार कर रख देते हैं उसे। जब चश्मा उतार कर रख देते हैं तो सामने वाले की सभी कमजोरियां हमें ही नजर आती है। प्रॉब्लम ये होता है, इसलिए सदैव हम कौन सा चश्मा पहन के रखेंगे या उतार के रख लेंगे? उतार के रखेंगे तो गुम हो जाएगा, वो टूट जाएगा, गुम हो जाएगा, कोई चुरा लेगा, कहीं खो देंगे। इसके लिए कभी नहीं उतारेंगे हम, ये प्रण करके जाएंगे भगवान का दिया हुआ ये ज्ञान का चश्मा हम सदैव पहन कर रखेंगे, जिसके लिए आपको फूटी कौड़ी भी देनी नहीं है, फ्री में मिला है। और उसे पहनकर हम खुद देवता बन जाएंगे। बनेंगे ना, आशा तो सभी को है देवता बनने का, लेकिन क्या करें, मेहनत नहीं की जाती है। हमारे बदले कोई मेहनत करे और मैं देवता बनूं तो आसानी से हो सकता था। हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। इसलिए जैसे अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे ही खाना पड़ेगा, दूसरा कोई खाएगा तो मेरी भूख नहीं मिल सकती। इसी तरह अगर मुझे बदलना है, मुझे देवता बनना है, तो मुझे ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए इतना अच्छा जो मौका मिला, इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता। इतना बड़ा संगठन, इतने हजारों लोगों का शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं, दुआएं, पॉजिटिव थॉट्स जो हमें यहाँ मिल रहा है, इसका हम पूरा लाभ उठाएंगे और बदल के जाएंगे और बाबा की आशाओं को जरूर पूर्ण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।